मुखारविन्दे बिनु वेशयनम् वटस्य पत्र सकुटे शयानौ पालौ मुकुन्दम् मनसा स्मरामि।
गुरुवृन्दावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरिम्, यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं प्रभजन्तमनुपेति मपेत कृत्यम्, द्वैपायिनो विरह कातर्याजुहाव, पुत्रेति तन्मेतया तर्वने दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोष्मि। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। लाल मेरो है,
वो तो बांके बिहारी नंद लाल मेरो है,
वो तो बांके बिहारी नंद लाल मेरो है,
वो तो है गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है,
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
सामूहिक संकल्प मंत्र का उच्चारण करें। ओम तत् सत्,
ओम तत् सत्,
द्वैतस्य ब्रह्मणो अन्ये द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वात् मन्मन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते कीलकनाम संवत्सरे अमोकनामनोऽहम् अमो गोत्र उत्पन्नोऽहम् अद्य मासानाम् उत्तमे मासे मार्गशीर्षमासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां तिथौ सोमवासरे महाराष्ट्रप्रान्ते मुम्बईनगर्यां श्रीप्रेमपुरी आश्रमे श्रीमद्भागवत्सप्ताह श्रवणार्थम् सप्तम दिवसे प्रथम उपस्थितो विनियोगः अनेन श्रीमद्भागवत्सप्ताह श्रवणेन माम धर्मः अर्थः कामः मोक्षः फलानां प्राप्तिः अस्तु एवं च अभीष्ट फल सिद्धिः भगवत्कृपा अस्तु श्रीकृष्ण परमात्मा देवता प्रियन्ताम् इति
जगन्नियंता जगदाधार अखंड ब्रह्मांड नायक नंदनंदन मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर तथा आवाहित समस्त देव विग्रहों के पावन चरणों में तथा परम पूज्य शिवस्वरूप लीलालीन ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन पुनीत पादारविंद में सत्सत वंदन। श्री प्रेमपुरी आश्रम के कुशल कर्मठ समस्त ट्रस्टी वृंद एवं इस श्रीमद् भागवत सप्ताह के यजमान मुख्य यजमान माधुरी बैंड ढोलकिया परिवार तथा समस्त यजमान वृंद श्रद्धामयी मंगलमयी माति शक्ति स्वरूपा माताओं एवं कृष्ण रस के रसिक समस्त भक्त वृंद संगीतज्ञ वृंद, आइए चित्त की वृत्ति को भगवान की ओर ले चलें और समाहित करें।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की।
आज नंदनंदन मुरली मनोहर की दिव्य लीलाओं का श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को स्मरण करा रहे हैं। पावन गंगा के तट पर समाहित श्री राजा परीक्षित अपने गुरुदेव के पावन चरण में बैठकर उस भक्ति रस का भगवान श्याम सुंदर के दिव्य लीला और विग्रहों की पावन चरित्रों को श्रवण करके अपने हृदय में गदगद हो रहे हैं। सुखदेव जी विवेचन करते हैं, राजन परीक्षित जब जीव का हृदय अविद्या से आच्छन्न हो जाता है, अज्ञान से आच्छन्न हो जाता है, माया उसे आवृत कर लेती है, तब इस जीव को नाना दुखों की उपलब्धि होती है। ध्यान से बहुत सुंदर विवेचन कर रहे हैं, यह माया ही इस जीव को, ये अविद्या और अज्ञान ही इस जीव को तमाम द्वंद्वों में, तमाम कष्ट क्लेशों को देने में हेतु है। सो राजन, इस माया से, इस अविद्या से बचने का प्रयास करना चाहिए। जीवन को वैराग्य युक्त बनाकर ज्ञान की प्रधानता में, ज्ञान को प्राधान्य, ज्ञान का प्राधान्य बनाते हुए, ज्ञान को प्रधान बनाते हुए माया से विलग होने का, माया से हटने का प्रयास करना चाहिए। माया का अपना कार्य है, अविद्या का अपना कार्य है, अज्ञान का अपना कार्य है। अज्ञान अविद्या माया जीव को स्वाभाविक उसकी ओर अग्रसारित होती है। वेद का मंत्र है, वेद में भगवान कहते हैं इन इंद्रियों का स्वभाव है बहिर्मुख होना। सो राजन, बहिरंग इंद्रियों को अंतरंग करो। वेद का मंत्र है परांचखानी वितरण स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नन्द्रात्मा। राजन, परांच खानी वितरणय स्वयंभू, स्वयंभू ब्रह्मा ने इन इंद्रियों को बहिरंग बनाया है माया की ओर, आकर्षण की ओर, विषयों की ओर, भोगों की ओर ले जाने वाला स्वाभाविक बना दिया है। स्वाभाविक गति, ध्यान देना, जैसे जल की गति निम्नगाह नीचे की ओर जाने, जल को नीचे लाने का कोई प्रयास नहीं करने पड़ता है। ध्यान देना, विशेष ध्यान देना, जैसे हम टैंक में जल भरने के लिए मोटर और पाइप का अवलंबन लेते हैं, उस टैंक तक जल को पहुंचाते हैं, लेकिन उस जल को टैंक से नीचे लाने के लिए कोई पंप की आवश्यकता नहीं है, केवल टोटी खोलो अपने आप आ जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान देना, इसी प्रकार से ये जो इंद्रियां हैं बहिर्मुख होकर के, बहिरंग होकर के विषय गामी बन जाती हैं, पतन स्वाभाविक है, उत्थान साधना साध्य है। ध्यान देना, उत्थान साधना साध्य है। साधना करोगे, साधना के द्वारा आप उत्थान को प्राप्त करोगे और पतन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना, विशेष बात, उत्थान में साधक को साधना करने पड़ती है, उपासना करने पड़ती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सब का अवलंबन लेने पड़ता है। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। सठ संपत्ति, सठ संपत्ति के बिना आप ऊर्ध्वगामी उत्थान की ओर, वेदांत के सिद्धांत में सठ संपत्ति है, शांक के संबंध में, योग के संबंध में अष्टांग है। वेदांत में सठ संपत्ति, सुनना ध्यान से, वेदांत में सठ संपत्ति हमें आगे बढ़ाती है और शांख में अष्टांग योग। हम अष्ट अंगों को एम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को अपनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। शांख का सिद्धांत है, कपिल का सिद्धांत है, शांख का सिद्धांत है। आगे बढ़ने के लिए अष्टांग योग का अवलंबन लो, वेदांत का सिद्धांत है, सठ संपत्ति को लेकर के आगे बढ़ो। इस जीवन में सठ संपत्ति नहीं होगी, अष्टांग योग नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया, राधन हे राजन, इन साधनों को लेकर के आप साध की ओर बढ़ सकते हैं। साध ही आपके उत्थान का, आपकी प्रगति का, ऊर्ध्वत्व होने का एक माध्यम है। जो भी योगी यति अमलात्मा महात्मा, जो भी संत महात्मा मनीषी आगे बढ़ा है, इनका अवलंबन लिया है, कोई भी साधक, कोई भी जिज्ञासु इन साधनों के द्वारा आगे बढ़ता है। ध्यान देना, राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने इन साधनों के माध्यम से धीरे धीरे शनई शनई शनई, वेद का मंत्र है चरई वेति चरई वेति चरई वेति चरई वेति, धीरे 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 चलते 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 आप उस स्थल तक पहुंचते हैं। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात बतलाई शिवराजन, इस विधि से अपने को आगे ले चलो, आगे ले चलो। जैसा गुरुदेव का उपदेश, उसी के अनुसार श्री सुखदेव जी महाराज चल रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, सुखदेव जी महाराज कथाओं को सुन रहे हैं, तन्मय है। ध्यान देना, भागवत की किसी भी कथा के प्रति ऐसा भाव नहीं बना लेना कि महाराज ये तो राजा रानियों की गाथाएं हैं, ये गाथाएं नहीं, ये समाधि है, ये समाधि है। विचार करो, यदि राजा रानी की गाथा होती तो क्या सुखदेव जी महाराज समाधि खोल के ये कथा कहते? समाधि में संलग्न है, समाधि को छोड़ करके। और भाई परीक्षित, जिसने कल ही मरना है, आज ही मरना है, सातवां दिन है, ऐसा परीक्षित कथा सुनेगा? जिसकी सातवें दिन मौत हो रही है वो इन बातों को सुनेगा? इसे सिद्ध होता है कि एक अमलात्मा योगी महात्मा और एक जो मुमुक्षु, जो मृमाण पुरुष है, इधर उसकी कभी गति नहीं बनेगी, इसे निश्चित है। ध्यान देना, परीक्षित महाराज ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, गुरुदेव बतलाने की कृपा करें। आप मुझे रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाए, हे गुरुदेव आप मुझे आप भगवान श्याम सुंदर की 16108 विवाह शादियों की कथा सुनाने जा रही है। शुभ गुरुदेव, ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न आपके अंदर भी उठ सकता था। सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया, भगवान इन शादियों का संबंध हम जैसे विरक्तों से क्या है? ध्यान देना, मैं इस थोड़ी बात को आध्यात्मिक पुट देना चाहता हूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं किसी ग्रंथ का अवलोकन कर रहा था, उसका मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा है। बड़ी उच्चु उसमें बात आई कि ये सब वृत्तियां हैं। जब इन वृत्तियों का, जीव की इन वृत्तियों का जब संबंध, जब विवाह भगवान के साथ हो जाता है, ध्यान देना, जब ये भगवान के साथ ब्याही जाती हैं, भगवान की साथ विवाह होने पर ये भगवान की बन जाती हैं, भगवान को समर्पित हो जाती हैं, तो ये भी तदमय हो जाती हैं। ये भी ध्यान देना, नहीं तो सोचो, मृमाण पुरुष को शादी देखने की इच्छा होगी या शादी में जाने की इच्छा होगी? हमारे सन्यास के ग्रंथों में सन्यास पद्धति में लिखा है कि सन्यास को शादी का महोत्सव नहीं देखना चाहिए, ऐसा बाल लिखा है। कोई भगत आग्रह करे तो चले, हम लोग भी चले जाते हैं, क्या करूं, दुनिया में समाज में रहता हूं, पर वहां ऐसा लिखा है, ध्यान देना, वहां ऐसा लिखा है कि बीत रागी विरागी अलमा अमलात्मा। मैं उस ग्रंथ को पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा अर्थ किया कि भाई गृहस्थ की शादी एक काम यज्ञ है। क्या है? ध्यान देना, सावधानी से सुनना, विवाह काम यज्ञ है। क्या है? काम यज्ञ है। सन्यासी तो ज्ञान यज्ञ करता है, महात्मा तो ज्ञान यज्ञ करता है, काम यज्ञ में जाने की उसको आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक ज्ञान पक्ष कह रहा हूं, इन 16,108 शादियों का, भगवान की शादियों का मैं ज्ञान पक्ष कह रहा हूं। विवाह, ये जो विवाह है वो काम यज्ञ है, और यह जो काम यज्ञ है, इस काम यज्ञ का तात्पर्य काम का भोग नहीं, ध्यान रखना, विशेष बात, कहीं आप लोग कहीं विचलित नहीं हो जाना, भ्रमित नहीं हो जाना। शादियों का तात्पर्य काम यज्ञ होते हुए एक काम यज्ञ है, एक काम यज्ञ भोग के लिए नहीं। लिखा है, सुनना ध्यान से, विवाहो ना विलासार्थम धर्मार्थमेव केवलम, विवाहो ना विलासार्थम धर्मार्थ में भी केवलम। सुनना ध्यान से, विशेष ध्यान से, ए विवाह विलास के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, बल्कि धर्मार्थ में भी केवलम, ये धर्म के आचरण के लिए है, धर्माचरण के लिए है, ये विवाह कामनाश के लिए है। ध्यान देना, लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे से लोहे को काटा जाता है, विवेचना की जा रही है। टीकाकार कह रहे हैं, श्रीधर जी महाराज कह रहे हैं, भागवत की टीका सुनना ध्यान से, टीकाकार कह रहे हैं कि लोहे को लोहे से काटा जाता है, इसलिए काम से काम को मारा जाता है, काम से। ये विवाह काम को काम से मारने के लिए है, ध्यान देना, विवाह आसक्ति के लिए नहीं है, विवाह भोग के लिए नहीं है, विवाह विलास के लिए नहीं है, विवाह इसलिए है कि हमारी परंपरा चलती रहे। एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है, भगवान ने व्यवस्था बनाई है, स्वयं भगवान स्वयं व्यवस्था में बंधे हैं। भगवान गृहस्थ का रूप धारण किए, क्या धारण किए? अरे वो तो चिन्मय है, सुनना ध्यान से, भगवान तो चिन्मय है, निर्गुण है, अव्यक्त है, निराकार है। निर्गुण निराकार अव्यक्त चिन्मय को क्या आवश्यकता पड़ी? पर भगवान लीला करते हैं, क्या करते हैं? भगवान ने लीला की है, भगवान ने 16108 देवियों के साथ शादी की। ये क्या है? भगवान ने कहा कि ये संसारी लोगों, तुम एक पत्नी में बनकर के झंझावात में फंस जाते हो, जीवन को बर्बाद कर लेते हो। मेरी 16108 पटरानियां हैं, पत्नियां हैं, पर 108 के साथ में रमण करते हुए भी, रहते हुए भी, ग्रस्त में रहते हुए भी, मैं उन सबसे परे हूं, उन सबसे बिलग हूं। कुछ आई बात समझ में? कुछ समझे? विवाह क्यों? फंसने के लिए नहीं, विवाह फंसने के लिए नहीं, विवाह तो उभरने के लिए है। अरे भाई, नौका संतरण के लिए होती है, नौका नदी से पार करने के लिए होती है, ये भव सागर है, इस भव सागर को पार करने के लिए व्यवस्था बनाई है, शादी शादी की है, डूबने के लिए नहीं। नौका तुमको मिली है डूबने के लिए नहीं, पार करने के लिए। पत्नी तुमको मिली है संतरण करने के लिए, डूबने के लिए नहीं। ध्यान देना, बात को समझो, रहस्यात्मक आध्यात्मिक अर्थ मत भूल जाना कि शादी भोग है, विवाह विलास है, विवाह विलास नहीं, विवाह तो मोक्ष का पथ है, मोक्ष का पथ है। यदि किसी सन्यासी के मुख से सुनोगे, किसी सन्यासी की पावन वाणी से भागवत को सुनोगे, तो वो यही अर्थ करेगा, यही अर्थ करेगा। और गृहस्थी के मुख से सुनोगे तो वही अर्थ करेगा। वक्तुर इच्छा विवक्षा, जो जिस रंग में रंगा होता है वो उसी रंग को दिखाएगा। अरे सोचो, विचार करो, इस हमारे प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट का नियम है कि प्रेमपुरी जी महाराज की पावन पुण्य स्मृति के अवसर पर हमें हमारे ट्रस्टियों ने बताया कि स्वामी जी, हमेशा यहाँ का नियम है, स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उसने कहा यहाँ का नियम है कि सन्यासी ही कथा करता है। अरे भैया, सन्यासी की स्मृति में सन्यासी ही कथा करेगा, गृहस्थी क्यों करेगा? जो बंधा हुआ है, ध्यान देना, जो बंधा हुआ है वो किसी को क्या खोल सकता है? खोल तो वही सकता है जो स्वयं खुला हो। सुनो ध्यान से, भगवान ने 16108 शादी की और आपको उपदेश दिया, ए दुनिया के लोगों, ए संसार के लोगों, राजेश भाई, भगवान ने उपदेश दिया, ए दुनिया के लोगों, भगवान बोले मैंने 16108 शादी की और करने के बाद भी कल आपने रास की लीला देखी, सुनी, दृश्य का अवलोकन किया, भगवान कितनी कितनी गोपांगनाओं के बीच में है। अंत में काम परास्त हो गया, काम परास्त हो गया, भगवान को अच्युत बोल के साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। ये 16108 विवाह का तात्पर्य है कि काम से ऊपर उठो, काम से ऊपर उठो। ध्यान देना, ये निश्चित निसंदेह इसका यही तात्पर्य है, भूल के इसका उल्टा अर्थ नहीं लगा लेना, उल्टा मत समझ जाना। कदापि विवाह का अर्थ भोग नहीं है। विवाहो ना विलासार्थम धर्मार्थ मिव केवलम, ये तो धर्म के लिए है, ये तो मोक्ष के लिए है, ये तो मुक्ति के लिए है। विकार से आगे बढ़ो इसलिए विवाह है, कोई काम का विकार आया है, ग्रस्त के लिए उपदेश है, कोई काम का विकार आया है, अवलंबन लीजिए और आगे निकल जाइए, आगे निकल जाओ। गृहस्थी के जीवन में यही सिद्धांत बनाना चाहिए, यही भाव बना करके हमको आगे बढ़ना है। इस प्रसंग में और भी कई चर्चाएं आई हैं, है? 16,108 शादियां हैं, ध्यान देना कितनी है, 16,108। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बहुत मार्मिक प्रसंग है। भगवान की जो शादियां हैं कोई सामान्य शादी नहीं है, संसारियों की तरह शादी भगवान नहीं किए हैं, संसार के लिए नहीं किए। हाँ ठीक है, कथा है, कथा का अध्यात्म पक्ष भी होता है। इस कथा से 16,008 शादियों से अध्यात्म पक्ष में आओगे तो मोक्ष का मार्ग मिलता है, व्यवहारिक पक्ष देखोगे तो व्यवहारिक पक्ष में है कि भगवान कृष्ण कितनी व्यवहारिक हैं, अपनी किसी भी पत्नी को निराश नहीं होने देते हैं, हर पत्नी का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं, जितनी पत्नी उतने भवन। और इतना ही नहीं, यहां लिखा है गर्ग संहिता में लिखा है, कौशिकी संहिता में लिखा है कि भगवान की एक पत्नी से 10 पुत्र हुए। कितने हुए? यहां विवेचन आ रहा है कि एक एक पत्नी के 10 पुत्र हुए हैं। भगवान श्याम सुंदर ने द्वारिका में 3,108,000 आचार्य रखे हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा विवेचन आया, हिसाब कर लो, एक पत्नी के 10 बच्चे हैं तो 16,108। भाई राजेश आपका गणित बहुत अच्छा है, आप तो सीए हैं, इस मामले में मैं कुछ नहीं हूं, हमारी ये पक्ष बहुत ढीला है, हिसाब किताब वाला पक्ष मेरा बहुत ढीला, और हमने करना भी क्या, मैं तो महात्मा आदमी हूं तो मेरा पक्ष ये भगवान का पक्ष पुष्ट होना चाहिए। आप हिसाब लगाओ, 16,108 हैं, एक के 10 हैं तो कितनी हुए, 1,60,000। देख लो, विचार कर लो, इतने तो इनके बेटे हैं, फिर आगे बताया 1,00,000 के भी इतने इतने बच्चे हैं। कितने बड़े गुरुकुल होंगे, कितनी बड़ी व्यवस्था होगी, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके पढ़ने की व्यवस्था, उनकी हर चर्या की व्यवस्था। आप दो बच्चों में परेशान हो जाते हो, एक बीबी से तंग हो जाते हो, तुम एक बीबी से तंग हो जाते हो, दो बच्चों से परेशान हो जाते हो, दुखी होकर के माथा पीटने लगते हो। भगवान कहते हमारी तरह ग्रस्त बनो, बनना है तो कुछ समझे, हमारी तरह ग्रस्त बनो, मैं ग्रस्त में रहता हूं, जरा माथे पे कोई शिकन नहीं आती है, खुशी से जी रहा हूं, सब खुश हैं, हमारे ग्रस्त में सारे खुश हैं, सारे खुश हैं। आई समझ में कोई बात? इससे क्या शिक्षा लो, इस प्रसंग से क्या शिक्षा लोगे कि महाराज हम भी आज से माथे पे कोई शिकन नहीं लाएंगे, ग्रस्त में खुशी से जिएंगे, हंस के जिएंगे, आराम से रहेंगे। भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा ग्रस्त है, आपका तो कुछ भी नहीं, जीरो। फिर कितने कितने भगवान पसंद है, ध्यान देना, पारमार्थिक आध्यात्मिक पक्ष देखो, व्यवहारिक पक्ष देखो, भगवान का सामाजिक पक्ष देखो, बहुत बहुत अच्छा है। सामाजिक पक्ष में भगवान की बहुत अच्छी स्थिति है। ध्यान देना, सर्वांगीण आप चिंतन करोगे, एतु पक्ष बहुत श्रेष्ठ बहुत पुष्ट पक्ष है भगवान श्याम सुंदर का। 16108 कितनी कोट में गिना दूं, कैसे कैसे संक्षेप में सूर्य को देख के बात करूंगा। बोल वृंदावन, मैं आज पूरी ताकत लगाऊंगा, आठ कम से कम दो समाज सही टाइम पे खत्म कर दूं। बीच में गड़बड़ करते रहे, आज ताकत लगाऊंगा 10 बजे खत्म करूं, और शाम को भी ताकत लगाऊंगा ठीक 7:30 में खत्म करूं। पहले भी 2 दिन सही समय पे विराम दी, अब लास्ट के दिन भी सही समय पर विराम दूंगी, तो पाप बीच में आगे पीछे निकल गए तो एडजस्ट हो जाता है। आइए सुनिए, ध्यान से सुनिए। पहली पत्नी भगवान की रुक्मिणी है, ध्यान देना। भगवान की प्रथम पत्नी रुक्मिणी है कालिंदी। अर्जुन के साथ भगवान हस्तिनापुर गए हैं, सायंकालीन यमुना के पुलिन पर भ्रमण कर रहे हैं, एक देवी यमुना में बैठी है, आंख बंद किए हुए पद्म आसन लगाए, भगवान की निगाह पड़ी, भाई अर्जुन ये देवी ये जल के अंदर कैसी बैठी है टीले पर, जरा पूछ क्या हो इसको। अर्जुन को भेजा, अर्जुन ने पूछा देवी तुम कौन हो, मैं सूर्य पुत्री हूं, किसलिए यहां क्यों बैठी हूं। बोले मैं इसलिए बैठी हूं, मैंने संकल्प किया है मैं कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्णन करूंगी। अर्जुन आई बतलाया, भगवान ऐसे ऐसे बोल रही है, भगवान ने हाथ पकड़ा, चलो कोई बात नहीं। संक्षेप में भगवान लाए, उनके साथ भी पाणग्रहण हुआ, जैसे कल आपने यहां चौकी रख करके लामे फेरे कराई, क्या कराई लामे फेरे हुए, यहां बोलते सप्तपति, सप्तपति यही बोलते हैं ना फेरे, कहीं भामर बोलते हैं कहीं सप्तपति बोलते हैं कहीं लामे बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं लामे, यूपी में बोलते हैं भामर, महाराष्ट्र में कहते हैं सप्तपति, और गुजरात में क्या कहते हैं, गुजराती क्या बोलते हैं सप्तपति, मंगल फेरा, ओ मंगल फेरा, क्या बात है बाकी मंगल फेरा है, क्या अर्थ, बहुत अच्छा अर्थ लगाया आपने मंगल फेरा। गृहस्थ में बहुत अच्छी व्याख्या कर चुका हूं भी शादियों की, आध्यात्म पक्ष वो निकल गया, बहुत अच्छा ध्यान देना सुनना बड़े प्यार से। कालिंदी को ले गए द्वारिका में, गए मंडप गाड़ा, मंडप गाड़ करके जैसे कल माताओं ने 7 बार 7 फेरे गाए, 7 फेरे तो द्वारिका में फेरे गाए गए हैं। संक्षेप में चुटकी में काम करूंगा, लामे फेरे हुए और भामर बोलते हैं, तो बोले पहलिया भामरे होए, पहलिया भामरी होए की बिटिया बाप की, और दूसरी भामरे होए के बिटिया बापई की, तीसरी या चौथी या पचमी या भामरे होए की बिटिया बापई की, और सतमी या भामरे होए के बिटिया साजन की, मर गई साजन की। ध्यान देना सप्तम भामर होते ही कुछ भामरों में पति आगे होता है और कुछ में पत्नी आगे होती है, बड़ी अच्छी व्यवहारिक चर्चाएं हैं, बड़ी सुंदर। 8 के साथ शादी हो गई, भामासुर नाम का एक राजा है, उसके यहां पर 16,100 बंदी हैं, भगवान के पास सूचना पहुंची है, शिव भगवान ने अपने रथ पर बैठ करके प्राग ज्योतिषपुर में भगवान पहुंच गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, थोड़ी व्याख्या कर दूं, जय जय श्री राधे, चलो थोड़ी व्याख्या थोड़ी है। कालिंदी के साथ शादी हुई, आगे ये दूसरी हो गई, तीसरी भगवान की शादी नागजिती, अयोध्या के राजा उन्होंने स्वयंवर किया नाजिती का। उनके पास में 7 बैल थे, 7 बैल। स्पर्धा हुई, स्पर्धा हुई, नियम रखा कि जो भी इन कुख्यात बैलों को, बड़े क्रोधी बैल थे, उनकी आंखों को देख करके लगता था पत्नी ये जहरीले होंगे। राजा ने कहा कि इन 7 बैलों को एक साथ भगाते भगाते जो नाथ देगा, बैलों को नाथा जाता है नाक में, आपने देखा होगा हल चलाते हुए नाक में रस्सी डाल करके फिर उनको कमांड करके फिर चलाया जाता है। नियम रखा जो एक साथ उनको नाथ देगा वही नाग जितनी से शादी करेगा। सभी राजाओं ने प्रयास किया, कोई नाथ नहीं पाया। भगवान बोले अब तो कोई एक काम को नहीं कर पाया, चलो मैं देखता हूं। भगवान श्याम सुंदर ने एक साथ बैलों को चाबुक मारा और तेजी से बैलों को भगाया, और भगाते भगाते एक लंबा सुआ था उसमें रस्सी को प्रो रखा था, और भगवान ने भगाते भगाते जब एक साथ में 7 आ गए, भगवान ने ऐसा सुआ फेंका तो 7 को एक साथ में नाथ दिया। रस्सी पकड़ाई राजा को, लो पकड़ो, एक साथ 7 को नाथ दिया। नागजीत के पिता ने खुश होकर के वो नागजीती नाम की कन्या जिसका नाम सत्या पड़ा, क्या नाम पड़ा, सत्या, भगवान को ब्याह दी। चौथी जामवती सत्राजित को, सूर्य के उपासक थे। संक्षेप कर रहा हूं, श्लोक बोलने की इच्छा होती है पर बहुत बातें कहनी है। हम चाहते हैं जितना अधिक आपको लाभ मिले ज्यादा अच्छी बात है। हमारा भैया गिरीश बोला, स्वामी जी अधिक से अधिक कथाएं कही जाए तो और सबको आनंद मिलेगा, क्योंकि यहां भगत यजमान बदलते रहते हैं हर साल। मेरे बहुत खुशी की बात है, हम यही प्रयास करेंगे। इसी प्रयास को लेकर, वरना मैं इसमें अटक गया तो पूरा टाइम इसी में हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सुंदर ध्यान से, जो जामवती है ना सत्राजित, सूर्य के उपासक थे, आराधना की, एक मणि मिली। मणि को लेकर के एक दिन भगवान कृष्ण से मिलने के गए, मिलने को गए। लोगों ने दूर से आते देखा, भगवान कृष्ण का सूर्य भगवान मिलने आ रहे हैं। भगवान का सूर्य नहीं आ रहे हैं, आपको नहीं मालूम है, सत्राजित आ रहा है। उसने के पास मणि है, वो सूर्य की भांति चमकती है, अरे सूर्य नहीं है, हम समझ गए भाई होगा, वही निकले। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा देखो सत्राजित, ये जो मणि है तुम इसका उपयोग क्या करोगे? हमारे ख्याल से तो उग्रसेन वृद्ध हैं और उनको राज्य का संचालन करने में दिक्कत होती है, राजा है व्यवस्था समझ, तो ज्यादा अच्छा होगा कि एक कई बार 8 बार सोना देती है, यदि उनको दो दोगे तो व्यवस्था अच्छी चलेगी। भगवान ने बहुत अच्छी बात की, समाज की व्यवस्था कैसे बने, किसको किस चीज की आवश्यकता उसको दे देनी चाहिए। आप तो राजा, आप में धन की कमी है नहीं। उसने कहा मैं नहीं दूंगा, ए, मैंने स्वयं प्राप्त की है, कोई बात नहीं। संयोग की बात, एक दिन उनका भाई प्रसेन गले में उसको धारण करके जंगल में निकला, आगे सिंह मिला, सिंह ने उसे खा लिया और मणि को लेकर के चला, तो उधर से ऋक्षराज आए, ऋक्षराज ने सिंह को मारा और मणि को लिया, अपनी गुफा में घुस गए। जब कई दिन से वो भाई लौट के नहीं आया प्रसेन, उसने कहा कि मुझसे ये मणि कृष्ण ने मांगी थी, मैंने दी नहीं, और उसका इन्होंने वध कर दिया, मणि को ले लिया। ऐसा भगवान को उस मणि का कलंक लगाया। ध्यान देना, यह कथा आती है कि भगवान को कलंक लगा। बोले कलंक क्यों लगा, किस लिए लगा? बोले उन्होंने एक बार, ध्यान देना, चौथ का चांद देखा था। क्या देखा था? अरे तजो चौथे चंदा की नाई, जो चौथ का चांद होता है कभी नहीं, भादों के महीने में भादों के महीने में चौथ का चांद कभी नहीं देखना चाहिए। भगवान ने कहा, हमने देख लिया, तो उसी का कलंक भगवान को लगा। बोले वृंदावन विहारी लाल की, भगवान ने कहा अच्छा मुझे कलंक लगा तो उसका मैं समाधान करूंगा। भगवान को सैनिकों को लेकर के जंगल में जाते हैं और गुफा में प्रवेश किया तो वृक्ष की कन्या बालक खेल रहा था मणि को लेकर के। भगवान ने साथ में दाई थी, मणि लेना चाह तो दाई चिल्ला पड़ी। वृक्षराज आए खूब भगवान से घमासान चला दोनों कबाव जबरदस्त। जब वृक्ष थक गया, वृक्षराज थक गए, जामद थक गए, चकनाचूर हो गए, उन्हें स्मरण आया ये बल सामान्य व्यक्ति में नहीं हो सकता है। उसने जब अपने इष्ट राम का ध्यान किया तो राम के रूप में कृष्ण को वो देखने लगा। उसने कहा अच्छा अच्छा तो ये हमारे राम जी ही कृष्ण बनकर के आए हैं। साष्टांग नमस्कार किया, कहा प्रभु हमसे घड़ी बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है। भगवान बोले भूल कुछ नहीं हुई है, जामंत बात यह है कि तूने बहुत बड़ा युद्ध किया था लंका में मेरे साथ में, पर तूने ये हमसे कहा था कि मेरा अभी दिल नहीं भरा युद्ध करके, अभी खुजली शांत नहीं हुई। तो मैंने कहा मैंने तेरी उस इच्छा को पूरा किया है। भगवान की हर लीला में रहस्य है, कब कहां क्या किस लीला के द्वारा किसको कृतार्थ कर दें, ओ तेरी इच्छा थी उसको मैंने पूरा किया। उसी समय वृक्षराज ने जामंत ने अपनी कन्या ध्यान देना जाम्बती को उसके हाथ पे वो मणि रख करके दे दिया। महाराज मणि के सहित मेरी कन्या ले जाओ, आप इससे विवाह करो। भगवान ने बोला ए प्रसन्नेन्द्रा एले मणि बदनाम कर दिया मेरे को तूने, ऐसे ऐसे वहां मिली है। उसने अफसोस किया, भूल हो गई, गलती हो गई, मुझे नहीं कहना चाहिए था, अब ये मणि मैं नहीं रखूंगा, मेरी जो कन्या है हम उस कन्या के सहित आपको ये मणि देता हूं। कन्या को लिया, शत्राजित की कन्या का नाम है सत्यभामा, सत्यभामा नाम की कन्या के हाथ में वो मणि रखी और कहा लो महाराज मणि के सहित कन्या को ले जाओ। पांच शादी हो गई, छठवीं लक्ष्मणा, सातवीं मृतवृंदा और आठवीं भद्रा, कितनी हो गई आठ हो गई ना। और भौमासुर के यहां पर 16,100 बंदी है। प्राग ज्योतिषपुर में भगवान गए, भौमासुर से युद्ध किया, उसको मार दिया। 16,100 को भगवान ने वहां से बंदी गृह से मुक्त कराया और कहा अब आप अपने अपने घर जाइए अपने अपने। वो कन्याएं बोली महाराज हम कहां जाएं, हमको तो ये उठा के लाया है, घर में जाएंगे कोई स्वीकार नहीं करेगा, हमको लोगों ने दूषित समझ लिया, विकृत समझ लिया, अब मेरा समाज में कोई स्थान नहीं है, हम तो अब कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ ही चलेंगे। आपके ध्यान देना कितनी है 16,000। जब भगवान चले, ओ लम्बा का लम्बा लम्बा चौड़ा मेला है, भगवान सभी को लेकर के एक साथ लेकर के द्वारका में पहुंचे। द्वारका वासियों ने देखा इतनी कहां से, बोले ऐसे ऐसे वहां पर ये थी हम लाए। द्वारका वासियों का भैया किसी की शादी ना हुई हो तो हमको बताओ। वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान कृष्ण द्वारका वासी बोले वहां से लाए हो ना, ये अपहृता है ये दूषित है, ये विकृत है, ध्यान देना। भगवान श्याम सुंदर ने कितना अच्छा पक्ष लिया, सामाजिक पक्ष देखना। समाज में कोई बुराई नहीं पनपे, ध्यान देना। 16,100 के साथ यदि शादी नहीं होगी तो समाज की स्थिति क्या बनेगी। भगवान कृष्ण ने विचार किया समाज में विकृतियां आएंगी, बुराइयां आएंगी, इन बुराइयों का शमन करने का तरीका यही है, इनकी शादी होनी चाहिए। इनकी शादी, भ्रष्टाचार होगा, अनाचार होगा, पापाचार फैलेगा। भगवान श्याम सुंदर ने इस व्यवस्था को बनाने के लिए, ध्यान देना, भगवान की दृष्टि सभी पक्षों में है। समाज ठीक होना चाहिए, समाज में कोई विकार पैदा नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान ने 16,100 के साथ में, सबके साथ भगवान ने जितनी देवियां उतने भगवान ने रूप बनाए और सभी के साथ में शादी की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कितनी हो गई, कितनी सुना दी मैंने, 16,108। इस प्रकार से भगवान की शादी 16,108 हो गई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे। एक छोटा सा,
जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रखी लोगे, जहां नाथ रखी लोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी।
कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूंगा जहां ले चलो
चलोगे वही मैं चलूंगा।
मुझे सतगिरा
चलना सिखाया सहारा दे बाहों का संभलना सिखाया
मुझे सगरी राह पे चलना सिखाया सहारा दे संभलना सिखाया सदा दिल की बातें में सदा दिल की बातें में तुम्हीं से कहूंगा जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा
जहां ले चलो चलोगे वही में चलो
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल
बोली भक्ति वत्सल भगवान
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सानंदम सानंदम सुदिनम सुतास्तु सुधया कांता प्रिया लापिनी इच्छा पूर्ति धनम सुयोषते रतम स्वाज्ञा परा सेवका आतिथ्यं हरिपूजनम् प्रतिदिनमिष्ठान्नपानम् गृहे साधो सङ्गमुपाश्यते सततम् धन्यो गृहस्थाश्रमा।
सुनो ध्यान से, भगवान की 16108 शादी हो गई, 16108 शादी का समाचार जब महर्षि नारद जी महाराज ने सुना, मन में इच्छा हुई, मेरे इष्ट देव भगवान श्याम सुंदर 16108 रानियों के साथ में पाणि ग्रहण कर चुके हैं, मुझे एक बार भगवान का दर्शन जरूर करना चाहिए, भगवान का ग्रस्त देखूं कैसा चल रहा है।
वृंदावन बिहारी लाल की,
सो भगवान के ग्रस्त देखने की इच्छा हो गई, देखूं भगवान का ग्रस्त कैसा है, ग्रस्त कैसा होना चाहिए, ग्रस्त भगवान कृष्ण के जैसा होना चाहिए, उनका ग्रस्त कैसा है। बोले शानंदम, आनंद के सहित, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचातानी नहीं किसी प्रकार का, शानंदम शुदिनम, बहुत अच्छे दिन कट रहे हैं, सानंदम शुदिनम सुतास्तु सुधया, बच्चे कैसे होने चाहिए, सुधया, सु मने अच्छी, धी माने बुद्धि, अच्छी बुद्धि वाले, अच्छे विचार वाले, सद विचार वाले, उस गृहस्थ में तब आनंद होगा, उस गृहस्थ के तब दिन अच्छे होंगे जब सुधया, जब पुत्र पुत्रियां बहुत विवेकशील हो, शानंदम सुदनम सुसात सुधया कांता प्रिया लापिनी, कांता पत्नी कैसी हो, प्रिय आलापिनी, घटाते जाओ भगवान के गृहस्थ से मिलाते जाओ, यदि आपका गृहस्थ भगवान के गृहस्थ से मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और जहां नहीं मिलता है वहां मिलाने का प्रयास करो। यदि आपने अपने गृहस्थ की तुलना बराबरी उनके जैसा यदि अपना गृहस्थ बना लिया तो आपका गृहस्थ द्वारिका से कम नहीं होगा, भगवान के गृहस्थ से कम नहीं होगा। एक कथा इसलिए तो सुनी जा रही है और एक कथा इसलिए कराई जा रही है कि ग्रस्त को बनाओ, जहां आप 24 घंटा रहते हैं, हर क्षण रहते हैं, ध्यान देना यदि वहां पर कोई गड़बड़ी हो, वहां पर कोई उलझन हो तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। प्रयत्न करो कि मेरा घर अच्छा बने, कैसा बने, बोले ऐसा बने जैसा भगवान कृष्ण का है। कृष्ण घर कैसा है, उनका गृहस्थ कैसा है, बोले शानंदम सुदिनम सुतास्तु सुधया कांता प्रियालापिनी, भगवान की पत्नियां जो भी हैं प्रिय आलापिनी, बहुत प्रिय बोलती हैं, बहुत मीठा बोलती हैं, बड़ा मधुर बोलती हैं। पति घर में आए तो ठंडा ठंडा गिलास का, गिलास में जल भर करके लीजिए, पानी पीजिए, क्यों, काम से आया है, थका मांदा आया है, दुनिया के व्यापार के झंझावात दिमाग में चलते हैं, दिमाग गर्म हो जाता है, ठंडे पानी पिलाओ। कांता प्रियालापिनी, वो तो अभी अभी कामों को करके आया बेचारा, कितनी उलझने थी और आपने एक घर की और उलझन के खोपड़े पे फेंक दी, सिर्फ एक उलझन और फेंक दी, बड़ा अच्छा विवेचन है। हाँ, यदि पत्नी सुलझी हुई है, यदि पत्नी विचारशील है, यदि पत्नी अच्छी है तो घर बहुत अच्छा चल सकता है। पत्नी ही घर को सुरक्षित बनाती है, पति नहीं। पति कमा के लाके दे सकता है और घर की व्यवस्था सुदृढ़ सुचारू रूपेण चलाने वाली पत्नी होती है। ध्यान देना, पत्नी घर को बिगाड़ना चाहे तो नीति की कहावत है, शास्त्र का कथन है कि वो सुई से खोद करके घर को उखाड़ के फेंक सकती है। और पति चाहे तो फावड़ा लेकर के घर को उखाड़ के फेंकना चाहे तो उखाड़ के नहीं फेंक सकता है। पति फावड़ा समझते हो ना, हाँ, कुदाल। यदि पति चाहे तो खोद के फेंक दूं, फावड़ा लेके लग जाए तो नहीं उखाड़ के फेंक सकता है, और पत्नी चाहे तो सुई से लेके क्रोध के बाहर। आया समझ में कुछ? कितना भारी दायित्व, कितना भारी कर्तव्य पत्नी का है घर को बनाने में, कितना बड़ा हाथ है पत्नी का घर को बनाने में, ये भागवत है। क्या समझे? ये भागवत है, भागवत को समझिए, भागवत को लेके घर में ले जाओ, उठा के ले जाओ, पन्ना नहीं, पोथी नहीं, वो तो आपके घर में रखी है, ये विचार ले जाओ भागवत की, विचार को ले जाकर के घर में लागू करो कि भगवान का जो ग्रस्त है हमसे कितना तालमेल खाता है। कांता प्रिया लापिनी, कभी भी आए हुए बाहर से पति को ऐसा कोई शब्द न बोलो जिससे उसका बेचारे का माथा और गर्म हो गए। कोई समस्या है, कोई उलझन है, कोई परेशानी है बच्चों की, परिवार की, घर की, मकान की, वगैरह वगैरह, तो उसको बड़े शांति से बैठने दो, माहौल को देखो, जब वो ठंडा हो तब उससे बात करो। कुछ आई समझ में बात माता हो है? ये बात आपकी है, माताओं को यही चाहिए। कांता प्रिया लापिनी, बहुत प्रियता से, बहुत मधुरता से, बहुत स्थिरता पूर्वक, बहुत धैर्य पूर्वक, बहुत विचार पूर्वक पति से बात करो। बाहर से आया हुआ है, कांता प्रिया लापिनी, पति कैसा चाहिए? पति पत्नी पति से प्रेम से बोले, स्नेह से बोले, तो अब इसका मतलब यही नहीं कि पत्नी ही प्रेम से बोलती रहे और पति डंडा लेके घूमता रहे, ये भी नहीं। ये भी आया है, सुनो देख के, पति कैसा चाहिए? स्वयोषित रहता, योषिता, योषित बोलते पत्नी को, रति बोलते प्रेम को, स्नेह को। जब पत्नी का ये दायित्व तो है तो पति का दायित्व तो है कि उसके प्रति बहुत स्नेह रखने वाला होना चाहिए। पति का जो प्यार है वो केवल पत्नी के लिए, मात्र पत्नी के लिए। सुयोषित रहता, ध्यान देना, जब ऐसा सामंजस्य होगा, ध्यान देना, एक गृहस्थ दो पहिए की गाड़ी है, कितने पहिए की, इसमें एक भी लड़खड़ा गया तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहिए बराबर के चाहिए, एक ऊंचा है एक छोटा है तो गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहिए बराबर होने चाहिए, एक विचार के होने चाहिए, एक भाव के होने चाहिए, सामंजस्य बिल्कुल मिलना चाहिए पति और पत्नी का। यदि सामंजस्य नहीं मिला तो स्थिति गड़बड़ाएगी, लड़खड़ा जाएगी, ध्यान देना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लड़खड़ा जाएगा मामला, गड़बड़ा जाएगा। सुनो ध्यान, साइकिल के पहिए दो, गाड़ी चलती है, अगला पहिया पति है और पिछला पहिया पत्नी है। अगला पहिया कौन है? पति है। और पिछला पहिया कौन है? पत्नी। इस गृहस्थ की गाड़ी को चलाने के लिए अगला पहिया चलता है पर सहारा लेता है पिछले पहिए का, क्योंकि चैन जो होती पिछले पहिए पर होती है, चैन घूमती है, धक्का मारती अगले को, वो भागता है। ऐसा हमारे यहां बतलाया गया है, चिंतकों का विचारकों का यह विचार है कि गाड़ी को चलाने के लिए सामंजस्य बहुत जरूरी, सामंजस्य बिगड़ जाएगा स्थिति डमाडोल हो जाएगी, समझिए बात को। सयोशत रता शानंदम शानंदम सुदिनम सुतास्तु सुधया और कांता प्रिया लापिनी इच्छा पूर्ति धन। धन कितना होना चाहिए? इच्छा पूर्ति आवश्यकता भर। ज्यादा होगा तो समस्या है, कम होगा तो समस्या है। ज्यादा होगा तो नींद नहीं आएगी और बहुत कम होगा तो नींद नहीं आएगी। कई कई पूंजीपति लोग इंजेक्शन लगाते हैं तब नींद आती है, इतना धन है, ध्यान देना। और कई ऐसे गरीब होते हैं उन बेचारों को भी नींद नहीं आती, अभी खाया सुबह क्या खाएंगे, ध्यान देना। इस धन कितना हो? इच्छा पूर्ति धनम, इच्छा की जिसमें आराम से। धन कितना हो? धन बोले इतना हो हम भी खाएं, अति भी खाएं, मेरा साधन भूखा जाए, ऐसी व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। इस ढंग का आतिथ्यम हरिपूजनम, गृहस्थ में हरि पूजन जरूर होना चाहिए। हरिपूजनम, जिस घर में हरि का पूजन है, शिव का पूजन है, विष्णु का पूजन है, वो घर खुशहाल में रहता है। भगवान को कभी भूलना नहीं, ऐसा गृहस्थ होना चाहिए। भगवान का गृहस्थ बहुत अच्छा चल रहा है। नारद जी की कथा आ रही है कि नारद जी की इच्छा हुई भगवान का गृहस्थ देखें। क्या देखें? गृहस्थ देखें भगवान का, इसी बहाने भगवान से मिलना हो जाएगा। सो नारद जी चले निकले वहां से। हमने एक कहीं कथा पढ़ी थी, वो सुना देते हैं आपको। नारद जी चले, जब चले दोपहर का समय था, जेठ का महीना था, धूप कड़क पड़ी हुई थी, बड़ी प्यास लगी थी। एक बगीचा मिला तो बगीचे में एक कुआं बना था, आप लोगों देखे कुएं, उस कुएं की लंबी मण थी, मन माने उसके जो आसपास चबूतरा सा बना था। सो नारद जी ठंडा ठंडा जल पिया, छाया बहुत अच्छी थी, धूप का समय था। सो नारद जी उसी कुएं की मन पे लेट गए, यूं हाथ रखा लेट गए, थके हुए थे, नींद आई सो गए। नारद जी सो गए, नारद जी को नींद आई, और जब नींद आई तो सो गए। सोए तो अब तो होता यह है कि भगवान तो चिंतन करने जा रहे, चिंतन करते जा रहे थे ना, भगवान की शादी हो गई है, अब भगवान के बच्चे होंगे, ऐसा ऐसा अपना वो योजना बना रहे थे। और जो सोचोगे वो सो बनाएगा ही। अब संयोग हुआ, नारद जी जो लेटे तो सो गए, अब सपन आया। क्या सपन आया? शादी का सोचोगे, शादी का सपन तो आएगा। सो नारद जी की सपन में शादी हो गई, एक बेटा हुआ, दो बेटे हुए, तीन बेटे हुए। बड़ा वो बेटा बोला, पिताजी आपके पास मैं लेटूंगा। सपने में आजा, थोड़े खचके कुएं की तरफ। दूसरा बोले, पापा मैं इससे सोता हूं, मैं सोऊंगा। तो आओ थोड़े खचके कुआ की तरफ। खसक सही रहे, वो सपना नहीं है, सपने में खसक रहे, सब और खसके कुएं की तरफ। तीसरा झगड़ा बोले, बिल्कुल नहीं है, दोनों सोए के इनको हटाइए, मैं लेटूंगा आपके साथ में। सो नारद जी और खसके खसके तो कुआ में गिर गए। नारायण जी बोला हाय हाय, सपने में शादी हो गई तो असली कुआं में गिर गई, असली कुआं में गिरे, और जिनकी असली में शादी हुई पता नहीं क्या हाल होगा उनका, क्या हाल होगा उनका। नारद ने बोला चिल्लाए नारद जी, लोग आए निकाल लिया। नारद जी ने कहा तो मैं जरूर जाके देखूंगा, उनके हाल देखेंगे क्या हाल है मेरे भगवान का, हमारी सपने में हुई ये हालत है, इनकी तो लंबी लाइन लगी है, क्या हाल, बेचारे परेशान हो गए, किसकी डिमांड कोई होगी, किसी की डिमांड कोई होगी, कोई फीस मांग रहा हो, कोई पैसे मांग रहा हो, कोई कुछ मांग रहा होगा, जरूर देखूंगा जाके कैसे हैं। छड़े छल्ले थे, खूब आराम से वृंदावन में मस्ती मारते थे, अब लंबी लाइन लग के जाके देखता हूं कैसे हैं भगवान। आगे नारद जी बड़े वृंदावन बिहारी लाल की, कोई पंडित जी कथा सुना रहे थे, ये भी कथा उन्होंने किसी के मुख से चुनी। नारद जी जा रहे थे, उसकी दो पत्नियां थी, एक का फ्लैट ऊपर एक का नीचे, बनती थी नहीं दोनों की आप समय देवियों की। उसने कहा देख तो ऊपर वाले में रहे मैं नीचे वाले में, और मैं दोनों में मिलकर जुलके रहूंगा, कभी यहां कभी वहां। नारद जी ने देखा एक आदमी था, उसकी एक देवी इधर खींच रही बाजू, एक ऊपर खींच रही, बीच में बेचारे जीना में लटके पड़े, वो आदमी एक ऊपर खींच रही एक नीचे खींच रही। नारद जी जा रहे, चिल्ला के बोला महात्मा जी बचाओ बचाओ बचाओ। बोले क्या बात हुई है? बोले बात क्या हुई महाराज, दो शादी हुई, ऊपर वाली खींच रही है कि तू ऊपर आ, और नीचे वाली खींच रही है तू नीचे आ, मैं कहां जाऊं, बीच में फंसा हूं। अच्छा दो तूने क्यों की, एक ही करता, एक का विधान है महाराज, जो हो गया मैं क्या बताऊं। नारद शिक्षा दिए, आगे बढ़े वृंदावन बिहारी लाल की, अब तो मैं जरूर जाऊंगा, उनकी तो 16108 है, जो दो में ए हाल है तो 16000 में क्या हाल होगा। गई, सुनो क्या बढ़िया बात, भगवान जब द्वारिका में पहुंचे, द्वारिका में पहुंचते ही विवेचन आ रहा है, बड़ा सुंदर, भगवान को क्या क्या देखा जा करके रुक्मिणी के भवन में सबसे पहले गई। रुक्मिणी के भवन में जब भगवान गए तो भगवान विधिवत ग्रस्त का पालन कर रहे, ध्यान देना भगवान का ग्रस्त कोई सामान्य ग्रस्त नहीं है। भगवान सुबह 4 बजे नहा धो लेते हैं, पूरे परिवार को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, सुबह उठ करके हवन यज्ञ करते हैं, पूरा ध्यान है कि गृहस्थी से कोई भूल होती है, चूक होती है, उस चूक की निवृत्ति के लिए हमें सत्कर्म करना है, हमें पुण्य करना है। शास्त्रों में लिखा है कि गृहस्थी से चूक होती है, भूल होती है, तो रोज 5 यज्ञ करे। बोले कुंडिनी पेशनी चुल्ली, कुंडिनी पेशनी चुल्ली, उदकुम्मी चमार्जनी, और पंच सुना गृहस्थस्य पंच यज्ञेन प्रणश्यति, कुंडिनी पेचनी चुल्ली, कुंडिनी पेशनी चुल्ली उदकुम्बी, 5 हो गई ना, गृह से भूल होती है। कुंडिनी बोलते हैं जिसमें धान को डाल के कूटते हैं, कुंडिनी पेशनी माने जिसमें अनाज डाल के पीसते हैं चक्की, कुंडिनी। अब जब तुम धान डाल के कूटोगे तो कोई चींटी होगी मर जाएंगी, गेहूं को पीसेंगे तो चींटी मर जाएंगी, जीव जंतु घुन वगैरह मर जाएगा, चूल्ही लकड़ी को जलाएंगे तो भी कीड़े मरेंगे। कुंडिनी पेशनी चूल्ही उदकुंभी, घड़े से जल लेंगे, कोई चींटी आई हमने तो घड़ा यूं झुकाया, इतने में चींटी आ गई नीचे, जब घड़ा छोड़े तो चींटी मरेगी, पाप हुआ। कुंडिनी से, पेशनी से, चूल्ही से, चूल्ही से, उदकुंभी से माने घड़े से, और मार्जनी सुबह झाड़ू लगाते हैं, शाम को झाड़ू, जब भी घर में झाड़ू लगाते हैं, कीड़े जीव जंतु हत्या होती है। गृहस्थ कितना प्रयास करे, कोई कितना प्रयास करे, पर 5 पाप तो होने होने ही हैं। अब इन पाप उन पांच पापों से कैसे बच सकते हो, कैसे बचोगे? तो बोले पंच यज्ञ न प्रणश्यति, पांच यज्ञों का विधान आया है, बहुत सुंदर। सच्चिदानंद भगवान की पांच यज्ञ का, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, मातृपितृ, ये सब यज्ञों को करिए। पंच यज्ञ न प्रणश्यति, पांच यज्ञ करो। जब पांच यज्ञ करोगे तो पांच पापों से बच जाओगे। भगवान श्याम सुंदर प्रातः काल यज्ञ करते हैं, अग्नये स्वाहा, सोमाये स्वाहा, इंद्राये स्वाहा। नारद जी गए यज्ञ कर रहे थे, क्या बात, भगवान यहां यज्ञ कर रहे हैं, पूरे परिवार को लेकर के, रुक्मिणी के परिवार को लेकर शादी कर रहे। बोले मन में सोचा यहां तो यज्ञ चल रहा है, पर बेचारी वो अकेली बैठी होगी, थोड़ी देर में दूसरे घर में गए तो वहां पर भगवान श्याम सुंदर अभिषेक कर रहे थे भोले बाबा का। अच्छा, ये तो वहां थे अभिषेक कर रहे हैं। तीसरी जगह सोचा वहां तो निश्चित बात है, ये तो बगल में कोई बना रखा होगा, तो वहां से यहां घुस गए होंगे। पर ऐसा विवेचन भागवत नहीं आता, भागवत विवेचन आ रहा कि हर बंगला अलग अलग था, हर बंगला अलग अलग था। नारद सोचे कोई घुस के आगे होंगे, वो तीसरी निश्चित परेशान होगी। जब तीसरे प्रवेश किए तो उद्धव जी से सत्संग चल रहा था, उद्धव जी से चार पांच दस घरों में गए। भगवान ने कहा नारद तूने मुझे तंग कर दिया, आज परेशान कर दिया। नारद जी भी देवी से बोले, बच्चों से बोले, थोड़ी अकेले में कुछ बात करनी है, आप उस कमरे में जाओ। भगवान ने कुंडी लगाई और नारद जी का कान पकड़ा, सामने कुछ नहीं बोला, मैं तेरा भगवान तू मेरा सेवक, ऐसे तंग करेगा मेरे को? कहा महाराज एक जिज्ञासा थी, इच्छा थी, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब ठीक है, अब देख लेना सब ठीक ठाक चल रहा है मेरा परिवार। बोले आपका परिवार महाराज इतना अच्छा चल रहा है, महाराज 16108 है, हर घर में कितनी खुशहाली है, कितना आनंद है, कोई देवी परेशान नहीं, कोई बच्चा परेशान नहीं, सभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सभी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं समझता हूं कि आपका भी घर ऐसा ही चल रहा होगा, और नहीं चल रहा है तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण के जैसा आपका गृहस्थ बने और खूब फलो फूलो, स्वस्थ प्रसन्न रहो, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। मैंने आपको भगवान कृष्ण की गृहस्थ लीला को सुनाया है, अब मैं आपको एक और थोड़ी सी बात सुनाऊंगा, उसके बाद प्रयास करूंगा आगे बढ़ने का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, एक छोटी सी धुनी बोलो, जय जय गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय
गोपाला
से बोले। यहां कह रहे हैं कि जो नहीं बोलेगा, अरे जेड़ा ना बोले, मैं पंजाब में जाता हूं, है बहन आपने कहा था ना, अरे जेड़ा ना बोले, जेड़ा ना बोले ओ दमन काला, जेड़ा
बोले, जेड़ा ना बोले दमन
जेड़ा ना बोले जेड़ा ना बोले ओदा मन काला जेड़ा
बोले जेड़ा ना बोले ओदा मन काला
असी बोलांगे शाटा नंद लाला
असी बोलेंगे असी बोलेंगे शाटा नंद लाला
असी बोलांगे शाटा नंद लाला
असी बोलांगे शाटा नंद लाला
जय जय गो श्री राधे श्याम तस्मात् कृष्णाय महते तस्मात् कृष्णाय महते दीयताम् परमारणम् एवं च सर्वभूतानाम् आत्मानं च हरणं भवेत्। सुखदेव जी महाराज विवेचन करते हैं सुराजन परीक्षित। इस प्रकार से भगवान की दिव्य लीलाएं चल रही हैं। आज बहुत पावन लीला भगवान की सुखदेव जी महाराज ने प्रस्तुत की है। ऋषि महर्षि योगी अमलात्मा महात्मा अनेक अनेक हस्तनापुर में आए हुए हैं। राजगद्दी के मिलने के बाद ध्यान देना, राजा को राजगद्दी युधिष्ठिर राजा को राजगद्दी मिलने के बाद मन में आया, ध्यान देना, जब आपको कोई उपलब्धि हो कोई प्राप्ति हो तो सत्कर्म जरूर कराओ शुभ कर्म जरूर कराओ। यहां विवेचन आ रहा है। इसको युधिष्ठिर को राजगद्दी मिली, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी इच्छा है यज्ञ करने की, हम राजसूय यज्ञ करेंगे, राजसूय यज्ञ करेंगे। देखो राजा का कर्तव्य है, राजा का दायित्व तो है व्यवस्था को अच्छी बना के रखे, व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए। यदि राजा के राज्य में व्यवस्था स्वस्थ नहीं है, व्यवस्था अच्छी नहीं है, भगवान कृष्ण के अभी प्रसंग को आप सुन रहे थे, व्यवस्था अच्छी क्यों है, इसलिए है, इसलिए व्यवस्था अच्छी है कि जो राजा धर्म को नहीं छोड़ता है, ध्यान देना, जो राजा धर्म को नहीं छोड़ता है वो राजा धर्म को लेकर के, विशेष महत्वपूर्ण बात, वो राजा धर्म को लेकर के नीति के साथ जोड़ देता है। वो राजा धर्म को लेकर के राजनीति के, धर्म नीति को राजनीति के साथ में जोड़ देता है। जब धर्म नीति राजनीति दोनों एक हो जाती हैं, जब धर्म नीति राजनीति एक मंच पर पहुंच जाती हैं, जब धर्म नेता और राजनेता एक मंच पर पहुंच जाते हैं, महत्वपूर्ण बात है, सुनना बेटा प्रकाश, जब राजनेता और धर्म नेता एक मंच पर पहुंच जाते हैं फिर क्या होता है? पहले तो आवश्यक बात है, जरूरी बात है कि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। धर्म नीति और राजनीति ये दो हाथ हैं, ताली बजाना है तो दोनों को इकट्ठा होना पड़ेगा, दोनों हाथ मिलेंगे तो ताली बजेगी, वरना ताली। राजनीति धर्म नीति दोनों आवश्यक हैं, इनका सामंजस्य होना, इन दोनों का सामंजस्य होना, और दोनों का सामंजस्य ही राजकरण है। क्या समझी? राज्य व्यवस्था है, दोनों का सामंजस्य एकीकरण होना ही राज्य व्यवस्था है। जिस राजा के राज्य में नीति अलग होगी धर्म अलग होगा, कभी वहां पर प्रजा सुखी नहीं हो सकती है। आप त्रेता को देखें, त्रेता को देखिए, त्रेता पर एक झांकी डालो, त्रेता युग में तो त्रेता युग का नियम था, हर राजा, प्रत्येक राजा धर्म गुरुओं से जुड़ा होता था, धर्म गुरु उन्हें धर्म की शिक्षा देता था, वो धर्म को लेकर के नीति से भागते थे, नीति से जुड़ते थे। जब धर्म नीति राजनीति जुड़ जाती थी तो उस राज्य की व्यवस्था, उसका राजकरण बहुत अच्छा चलता था। राम को देखे, त्रेता युग में दशरथ जी के पास गए हैं, दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास गए हैं, धर्म को सीखा है। द्वापर को देखिए, कृष्ण भगवान गुरु संदीपनी के पास गए हैं और गुरु संदीपनी से धर्म को सीखा है और धर्म को सीख करके नीति से जोड़ा है, व्यवस्था बहुत अच्छी। कृष्ण का राजकरण, राज्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, राम जी की राज्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, दशरथ जी की राज्य व्यवस्था बहुत अच्छी है। ध्यान देना, राज्य व्यवस्था में एक बहुत अच्छा शब्द बोलने जा रहा हूं, सुन ध्यान से सुनना, राज्य व्यवस्था का लचीलापन, ढीलापन, अरे भाई जो व्यवस्था होती है वो कड़काई से होती है, राजा ढीला हो जाएगा, अनुशासन नहीं होगा, जो राजा अनुशासन प्रिय नहीं व्यवस्था नहीं कर सकता है, व्यवस्था नहीं कर सकता है। व्यवस्था करने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है और अनुशासन बहुत कुछ करने पड़ता है। आप रामायण के पन्नों को पलटिए तो आपको मिलेगा कि राम जी ने इस व्यवस्था को बहुत अच्छा निभाया। कई बार ध्यान देना, कई बार वो बात परिवार के विरुद्ध होती है, अपने विरुद्ध होती है, परिवारिक जनों के प्रतिकूल है, लेकिन जो राजा न्यायी है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, ये नीति है, ये दोनों का सामंजस्य है, ये दोनों का यदि राजा ये विचार नहीं करेगा तो व्यवस्था नहीं दे सकता है। वर्तमान परिवेश में क्या हो रहा है, वर्तमान परिवेश में क्या हो रहा है, अभी इस समय क्या चल रहा है देश में, यही तो चल रहा है। नीति कहीं पर है, धर्म कहीं पर है। आज के राजनेताओं का कहना है नीति का धर्म से क्या लेना देना, धर्म का विषय अलग है, नीति का विषय अलग है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं समझता हूं वो राजनेता, वो राजनेता नहीं समझ पा रहे कि धर्म और नीति दोनों एक सामंजस्य, दोनों का समन्वय होना, दोनों का एकीकरण होना बहुत जरूरी है। जब दोनों एक हो जाएंगे तो व्यवस्था सुदृढ़ बनेगी। वर्तमान में ये नहीं हो रहा है। अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग चल रहा है। ये बहुत जरूरी व्यवस्था का होना। युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर बैठे, ध्यान देना, युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर बैठे, युधिष्ठिर जी महाराज ने विचार किया कि नीति और धर्म दोनों का संबंध होना चाहिए, धर्म का संबंध होना चाहिए। राजसी यज्ञ की तैयारी हुई और तैयारी होने के बाद धर्म को आगे रखो, धर्म को ध्यान देना। पैर नीति है, पैर नीति है, धर्म आंख है, धर्म आंख है, नीति पैर है। आंख के बिना पैर चलेगा तो खड्डे में गिरेगा, टकराएगा, एक्सीडेंट होगा। पैर के बिना, आंख के बिना यदि पैर चलेगा तो निश्चित खड्डे में गिरेगा, उसका भला नहीं हो सकता है, हाथ पैर तोड़ लेगा। रोड पर आदमी निकला है, आंखें बंद कर ली, क्या होगा, टकराएगा, मरेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। चलने के लिए आंख खुली होनी चाहिए तब पैर चले, तब पैर एक व्यवस्था है ना। नीति पैर है, आंख धर्म है, दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। ये दोनों एक होंगे गंतव्य पर पहुंच जाओगे, यथास्थान पर पहुंच जाओगे। युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया, सोचा कि हमें इस चीज को लेकर के चलना है। द्वापर है, द्वापर में नीति धर्म एक साथ में थे, त्रेता में नीति धर्म एक साथ में थे, कलयुग में नीति कहीं है, धर्म कहीं है, धर्म इसीलिए व्यवस्था चरमरा रही है, इसीलिए व्यवस्था चरमरा रही है। आपका प्रश्न था महाराज जी राजकरण व्यवस्थित क्यों नहीं चल रहा है, आपका प्रश्न था कि व्यवस्था ठीक क्यों नहीं बन रही है, इसीलिए नहीं बन रही है, इसीलिए नहीं बन रही है। युधिष्ठिर जी महाराज के यहां पर ऐसा नहीं, धर्म को आगे रखो, नीति को, नीति को उसके पीछे रखो, नीति को उसके, धर्म आगे होगा नीति उसके पीछे चलेगी, शट के चलेगी, व्यवस्था बहुत सुंदर बनेगी। इसको घर में भी लागू करना, इसको परिवार में भी लागू करना, इसको नगर में भी लागू करना, इसको देश में भी लागू करना। वृंदावन बिहारी लाल की, को समझ में आया? प्रकाश भाई आपका प्रश्न था, आपका प्रश्न था, यहां से आपको दिया गया ये व्यवस्था इस प्रकार से चलेगी। युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया कि हम धर्म को आगे रखें, भगवान को आगे रखें, हम एक करवा रहे हैं, ध्यान देना। ये नीति, ये नीति हम स्वयं यज्ञ कर रहे हैं, सभी राजा आए हैं, हम समझते हैं, हम यह बात जानते हैं कि भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है, चिन्मय है, निर्गुण तत्व है, परम तत्व है, योगी जिसमें रमण करते हैं। मैं चाहता हूं इस अवसर पर अग्रज पूजा, अग्रज श्रेष्ठ अर्जुन को, कृष्ण को माना जाए। यदि मैं कहूंगा तो शायद है लोग विरोध कर देंगे, क्योंकि कृष्ण राजा बन के आए हैं, द्वारिका से पधारे हैं, लोगों की दृष्टि में राजा हैं, पर वो भगवान है। पर वो ध्यान देना, नीति कहती है कि तुम अपने मुख से ना कहो, अपने पक्ष के आदमी को व्यक्ति में योग्यता है, लायकियत है, पर हमारा बेटा है, ध्यान देना। नीति, बेटा मेरा है, उसमें लायकियत है, योग्यता है, प्रतिभा है उस काम को करने की, और यदि मैं कहूंगा इसके लायके से आगे लाओ तो लोग विरोध कर सकते हैं, लोग विरोध कर सकते हैं। ऐसा कैसे, अवश्य के जरूरी है अपने मुख से न कहो, दूसरा कहे, और दूसरा भी कौन कहे, विरोधी पक्ष वाला, ध्यान देना, राजसी की बात कह रहा हूं, विरोधी पक्ष वाला। राजसी यज्ञ होने जा रही है, राजसी यज्ञ में दो पक्ष हैं, सभी राजा आए हैं, असुर वृत्ति वाला वाले राजा भी आए हैं और देवी वृत्ति वाले राजा भी आए, सभी आए, शिष्यपाल भी आया है, जयसिंध का पुत्र भी आया है, अश्विनी वृत्ति वाले राजा, दोनों पक्षों से लोग आए हैं। जरासंध का पुत्र सहदेव, बहुत बड़ी सभा लगी है जिस सभा के अंदर, क्या विवेचन आ रहा है, जिस सभा के अंदर व्यास हैं, पराशर हैं, भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, नारद हैं, बड़े बड़े योगी इति अमलात्मा महात्मा आए हैं, ब्रह्मऋषि आए, राजऋषि आए, ऋषियों से सभा भरी हुई है, राजाओं से सभा भरी हुई है। ध्यान देना, इस सभा के अंदर चर्चा चली कि अग्र पूजा किसकी हो, सबसे पहले पूजा किसकी हो, अग्रणी पूजा, अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। देवी लोग, युधिष्ठिर के पक्षी लोग बोलने के तो निश्चित है विरोध हो जाएगा। जरासंध का बेटा सहदेव खड़ा हुआ सभा के अंदर, ध्यान देना, जरासंध के बेटे ने खड़े होकर के सहदेव ने कहा, हमारे विचार से, हमारे मंतव्य से मैं ऐसा समझता हूं, इस पूजा का अधिकारी द्वारिकाधीश कृष्ण है, कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। सभी ने ताली बजाई, आप भी ताली बजा लो, हम समर्थन करते हैं पूजा पहले कृष्ण में होनी चाहिए। पात्र लादल दिया गया, चौकी लगा दी गई, चौकी पर खड़ा किया गया, उनको तिलक पूजा चंदन सब कुछ हुआ। इसी बीच में शिषपाल भड़क गया, और भी कई राजा बहुत कुछ बोलने लगे। युधिष्ठिर बोले, भाई ये क्यों बोल रहे हो, ये हमने तो बात नहीं रखी है, ये तुम्हारे पक्ष के राजा ने कहा, हमने स्वीकार कर लिया, अब तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, अब तुम फिर भी मद में चूर है, शराब को पिए हुए है। आदमी शराब पीता तो फिर वो होश में नहीं रहता है, वो नहीं बोलता, शराब बोलती है। सच्चिदानंद भगवान की, ध्यान देना, भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भाई गाली तो दे रहा, देने दो ना। भगवान को अपशब्द बोलने लगा, अरे गांव का ग्वाला है, पशुओं को चुंगाने वाला है, गमार है, भगोड़ा है, छोड़ के मैदान को भाग गया था, इसके लायक ही नहीं था पूजा के, बहुत कुछ बोला। भगवान ने कहा, भाई गाली दे रहा है, देने दो। भीम ने कशो कैसे देगा, गदा उठा के भागा उसको मारने के, भगवान हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है मारने की। अर्जुन ने गांडी पर हाथ चलाया, जो बोले आप ही बैठो। भगवान कृष्ण बोले, वाह वाह क्या बात है, शिषपाल बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके वाणी से तो फूल गिर रहे हैं, कितना मीठे बोल रहे हो, कितना मीठे बोल रहे हो। वो और गुस्सा आया, और गुस्सा आया, अब वो आपे से बाहर बहुत गालियां दे रहा है, बहुत गालियां दे रहा है। हरे कृष्ण, ऐसे किया तो भगवान बोले, एक बार तू इस पे ध्यान कर ले, ऐसे पर ध्यान कर ले, तूने मेरी तरफ एक किए, तेरी तरफ तीन जा रही हैं। मैं एक अंश गुनाहगार हूं, तो तू तीन अंश गुनाहगार है, तेरी और तीन जा रही हैं। किसी की बुराई करने के पहले, किसी को गलत साबित करने के पहले, ये ध्यान रखो कि एक उधर गई तो तीन इधर आई, तुम उससे तीन गुना ज्यादा गुनाहगार हो, तीन गुना अधिक। भगवान बोले, तू तीन गुना ज्यादा गुनाहगार है। किसी की पूजा देख के, किसी का सम्मान देख के, किसी का उत्थान देख के, किसी की प्रगति देख करके जलना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए। कोई रेखा खींची हुई है, तुमको बड़ी लग रही है, तो बुद्धिमत्ता का परिचायक है कि उस रेखा के बगल में एक उससे कई गुना लंबी खींच दो, आप अपने आप छोटी हो जाएगा, उसे मिटाओ मत। उस रेखा को मिटा के छोटा ना करो, उसकी जगह पर एक लंबी रेखा और खींच दो, अपने आप छोटी हो जाएगी। एक तुमको लगता है हमारा पड़ोसी बहुत बढ़ रहा है, तो इतनी मेहनत करो कि उससे तुम कई गुना आगे ऊपर उठ जाओ, अपने आप को छोटा हो जाएगा। ये तरीका है, ध्यान देना। बहुत कुछ बोलता रहा। भगवान वचनबद्ध थे, उसकी शिष्यपाल की मां को कहा था ये तो ऐसा ही है, क्रोधी है, इस पर ध्यान करना, कृपा करना। ठीक है, हम जरूर ध्यान रखेंगे। जब इसका जन्म हुआ तो भगवान की गोद में से दिया गया था, ध्यान रखना। ये भी गए तो उस समय जब इसका जन्म हुआ था तब। अच्छा ठीक है, आप हमको से कह रही हो तो मैं ध्यान रखूंगा। ये एक गाली देगा, दो गाली देगा, तीन गाली देगा, दस बार गलती करेगा, बीस बार गलती करेगा, पचास बार, साठ बार, सत्तर बार, अस्सी बार, 108 बार माफ करूंगा, और जो 109 करेगा तो फिर तो कर्मा कर दूंगा, कट कर दूंगा। और देने दो, और देने दो। 108 गाली पूरी हुई तो भगवान ने निकाला सुदर्शन है। वृंदावन बिहारी लाल की, शिष्यपाल मर गया ना जी। सुनो, यज्ञ आरंभ होती है, यज्ञ आरंभ हुई, बढ़िया यज्ञ का समापन हुआ, जो विरोधी राजा थे चले गए, ऋषियों का, इतियों का, सभी का सम्मान किया गया, बहुत अच्छा यज्ञ संपादन हुआ। यज्ञ संपादन के बाद यज्ञांत स्नान किया गया, स्नान करने के बाद सभी राजा आए हस्तिनापुर में लौट करके। स्नान करने के बाद तो सभा लगी हुई थी, वो मैदानों का, मैदानव का महल था। मैं दानव के महल में जब प्रवेश किया, और मैं दानव का बड़ा विलक्षण भवन बना था, बड़ा विलक्षण, उसकी विलक्षणता थी, जल का थल दिखता था और थल का जल दिखता था, ऐसा भवन था। दुर्योधन वहां पर आया, तलवार को निकाले हुए है, साथ उसके सेवक चल रहे हैं, जय जयकार करते आ रहे हैं। युधिष्ठिर के जो सेवक खड़े थे उनको डांटता हुआ, फटकारता हुआ अंदर घुस रहा है, सभा के अंदर, सभा एंट्री के पूर्व में, जल को थल, थल को जल, ऐसा दिखने वाली वहां की विचित्र रचना थी, वो मैदानव का बनाया हुआ था, माया से निर्मित था। सो जल को थल, थल को जल, जहां जल था वहां थल दिखाई पड़ा, उधरी वो चला दुर्योधन से, धाम से जाकर के वो जल में गिर गया। सारे के सारे सभा भरी हुई थी, सबने ताली पटा के हंस दिया, ताली बजाई और हंस दिए। अरे देखो, अंधे के अंधे ही तो होते हैं, ये दिन में नहीं सो दिख रहा है, इसको दिन में नहीं दिख रहा है। दुर्योधन ने कहा अच्छा, अंधे के अंधे होते, मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। बस महाभारत का आरंभ ये है, यहीं से हुआ। जवान को संभाल के रखो, जवान को पकड़ के रखो, जवान से कोई ऐसे शब्द न वाक्य निकल जाए। भगवान कृष्ण की स्वयं की वाणी है, स्वयं की कृष्ण की वाणी है। भगवान कृष्ण अपनी स्वयं वाणी से कह रहे हैं, आप गीता के प्रेमी हैं, आपने पढ़ा होगा, अनुदिवेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत और स्वाध्याय भीषणम चैव वाग्मयम तब उच्यते। ध्यान देना, अनुदिवेग करम वाक्यम, ऐसा कोई वाक्य नहीं बोलो जिसमें वेग हो, क्रोध हो, गुस्सा हो। अनुदिवेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम, ऐसा वाक्य बोलो जो किसी को दुख और कष्ट देने वाला ना हो। वाणी पे नियंत्रण रखो, जो वाणी पे नियंत्रण रखता है कम खाता है और गम खाता है। ऐसी की वाणी पे सरस्वती बैठती है, कौन बैठती है? सरस्वती बैठती, सरस्वती वहीं निवास करती है जो वाणी बहुत अच्छा बोलती है, जो वाणी वेद बोलती है, जो वाणी गीता बोलती है, जो वाणी उपनिषद बोलती है। हमें बड़ा गौरव है, हमें बड़ा गौरव है इस जगह पर, इस जगह से भाई वेद वाणी बोली जाती है, उपसने बोली जाती हैं, यहां से वेद बोले जाते हैं। धन्य है वो जगह, धन्य है वो प्रेमपुरी आश्रम, और धन्य यहां के सृष्टि हैं, धन्य यहां की माताएं हैं, धन्य यहां के बंधु हैं। मैं आपकी सराहना करूंगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी जगह मिली, ऐसा स्थान मिला, ऐसे संत का आपको आश्रय मिला जो आपको सहज में वेद सुनने को मिलता है, ब्रह्मसूत्र सुनने को मिलता है, पंचतत्वी सुनने को मिलती है, सब साहित्य सब दर्शन आपको सुनने को मिलते हैं। ऐसा होने पर वाणी पर सरस्वती बैठती है। कौन बैठती है? सरस्वती। अनर्गल बोलने वाले की वाणी से सरस्वती रूठ के चली जाती है, सरस्वती रूठ के चली जाती है। वाणी पर सरस्वती तभी बैठती जब अच्छा बोलोगे। ध्यान देना, मित भाषण और मित आसन और मित आसन, तीन चीजों पर ध्यान देना विशेष। मित भाषण, मित माने सीमित, मित माने सीमित, मित भाषण मित बोलो, मित राशन सीमित खाओ, मित राशन सीमित खाओ, जितनी आवश्यकता उसे थोड़ा कम खाओ, मित राशन और मित आसन। आसन को भी सीमित रखो, ये नहीं कि आज बैठे पूजा में कल नहीं बैठे, दो दिन बैठे दस दिन नहीं बैठे, नियम बनाओ। मित आसन मित रासन मित भाषण जब होगा ऐसा साधक सिद्ध हो जाएगा, ऐसा साधक सिद्ध हो जाएगा। जिंदगी में इन चीजों को अपनाओ, ये चीजें जीवन में उतर जाएंगी, साधना सफल हो जाएगी, मानव जीवन सफल हो जाएगा। प्रयत्न करो, प्रयास करो इस मित्रत्व की ओर आने में, इतन करो, प्रयत्न करो, निश्चित है आप सफलता को पाएंगे, जीवन अच्छा बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा, ऐसा बनो, अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। मित्रत्व की ओर जाइए, इन नियमों का पालन करो, जीवन आपका श्रेष्ठ उज्जवल महान बनेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से राजसी यज्ञ हुआ है, उस यज्ञ का संपादन हुआ है। जीवन में यज्ञ को जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। यज्ञों को करोगे, वेद को पढ़ोगे, पारायण कराओगे, कथा कराओगे, ये सब सद्वृत्तियां हैं, हमारे जीवन को आगे की ओर ले जाने वाली हैं। ऐसा करोगे सब अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। दस तो बच गया है, आगे बोलो क्या होना चाहिए, कहो तो विराम देता हूं। चलो विराम करते हैं। मैंने सुबह जब मैं बैठा था तो मैंने कहा था कि बीच में दो तीन दिन मैं प्रवाह में बह गया, और कल तो इतना बह गया कि मैं एक घंटा लेट हो गया, एक घंटा ज्यादा बोल गया है कल, इतना अधिक बोला। पर मैंने बैठते ही आज प्रयास किया कि भाई कम से कम आज लास्ट का दिन है, हम लास्ट में तो खरे उतरे तो आज मैं खरा उतर रहा हूं, दस बज रहा है, और अब मैं वाणी को विराम दूंगा, और सायंकालीन की सभा में हम बिल्कुल जल्दी आएंगे, सही टाइम पे आएंगे और सही टाइम पे खत्म करेंगे। इसलिए आप भी सही टाइम पे आओ, ताकि सही टाइम पर जो उसका समय है उस पर कथा को विराम दिया जाए। बहुत सुंदर बात है, आप बड़े प्रेम से कथा को सुन रहे हैं, बहुत आनंद से कथा को सुन रहे हैं, आपको आनंद जरूर आ रहा है और हमको भी आनंद जरूर आ रहा है, जरूर आ रहा है, क्योंकि ऐसे श्रोता मुझे कभी मिले नहीं, ये पहली बार मिले। बहुत सी कथाएं की उड़ीसा में, कथाएं की दक्षिण भारत में, मैंने बहुत कथाएं की, यूपी में बहुत कथाएं की, राजस्थान में कथाएं की, और पंजाब में तो करता ही रहता हूं, छत्तीसगढ़ तो कथा करता ही रहता हूं, मैंने बंबई में कथाएं की हैं। आज से 16 साल पहले हम स्वाध्यायां खूब किए, ये महीनों की कथाएं चलती ना जो आश्रमों में, वहां हमने खूब कथाएं की। हमारा वर्ष का 6 महीना बंबई हुआ करता था कभी, आज से 16-18 साल पहले। हम इतनी लंबी अवधि से बंबई से कटे रहे, अलग रहे, बिलग रहे, पृथक रहे, पता नहीं, हो सकता मेरा कुछ पुण्य कम हो गया होगा। भगवान की कृपा से पूज्य स्वामी हमारे विश्वेश्वरानंद जी महाराज ने हम पर अपना भाव प्यार उड़ेला, और टट्टियों के भी अंतरंग भाव, आप सबके अंतरंग भाव हम तक पहुंचे, उसका परिणाम निकला कि हम इस प्रेमपुरी आश्रम में आके आपको दो शब्द कह रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शेष चर्चा सायंकालीन की सभा में की जाएगी। इन्हीं शब्दों से वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति।
राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम तो नहीं।
अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम ही तो नहीं।
अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 आदत सी हो गई है। ओ श्यामा प्यारी आपड़े हैं तेरे नाम की
सहारे
क्षमा प्यारी
Yeah.